राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर बुनाके में। कार्तिक अष्टमी रात को शुरू हो जाएगी। इस मास में आप सब लोग पधार रहे हैं, भाग्यशाली हैं, भगवान का दर्शन और भगवान को दीप दर्शन और हरि कथा भागवत से हरि कीर्तन और भगवत प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ है, इसे मानव जन्म में भाग्यशाली को मिलता है। बहुला अष्टमी राधा कुंड का प्रकट्य दिवस है। हरे कृष्ण, नमामि विष्णु पदाय कृष्ण। धन्यवाद पाश्चात देश कारण। भगवान श्री कृष्ण को जितनी राधिका प्रिय है उतना ही उसका वो राधा कुंड प्रिय है। राधा कुंड के प्रकट्य का उत्सव रात को भक्त मनाएंगे और कल भी उसी के ऊपर चर्चा होगी संडे को। गत 5 दिन से हम दामोदर अष्टक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दामोदर अष्टक 8 श्लोक भगवान दामोदर को प्रार्थना की है सत्यव्रत मुनि ने, और नारद और सत्यव्रत के बीच में ये संवाद है पद्म पुराण में। तो पहले श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये मंगलाचरण है। ईश्वर जगत एक नाथ सर्वशक्तिमान निज प्रभु जो सच्चिदानंद है उसको नमस्कार करते हैं सत्यव्रत मुनि। और आगे पहले रूप माधुरी भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं लसत कुंडलम, और फिर उस जगह का वर्णन करते हैं जहां ये लीला हुई है। कहां भगवान की ये लीला हुई है? गोकुल भ्राजमान। ये लीला का प्रकाश गोकुल में हुआ है। इस लीला के कारण गोकुल विश्व भर में प्रसिद्ध प्रकाशित हुआ। आज हम बैठ के गोकुल की इस लीला को यहां मॉरिशस में गा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में ये लीला गाई जा रही है। ब्राजमंतम ब्रजमा गोकुल है, ब्राजमानम, ब्राजमानम का मतलब प्रकाशित। ये गोकुल में लीला प्रकाशित हुई। तो भगवान के सुंदर रूप का कुंडल के द्वारा वर्णन किया है, और स्थान जहां ये लीला हुई है गोलोक उसका वर्णन हुआ। और फिर लीला का वर्णन करते हैं। कौन सी लीला का वर्णन करते हैं? जिसके ऊपर हम 5 दिन से श्रीमद् भागवत से दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। यशोदा भी यूलूख लाद धाव मानम, यशोदा के भय से उखल से कूद के भागने लगे। क्यों उखल से कूदे, क्यों यशोदा से भागे, इसकी चर्चा हम 5 दिन कर चुके। भाग रहे हैं तो क्या हुआ? यशोदा भी यूलूख लाद धावन प्रामृष्टम अत्यंत दुर्त गोपिया, बहुत बड़ी मेहनत करके, बड़ा कठिन उठाकर, परिश्रम करके यशोदा मां ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। ये पहला श्लोक है। तो जब आप इस श्लोक को सुनते हैं या दीप दान करते हैं अर्पण, तो इसका इसका चित्र, इसका इसका टेलीविजन की तरह अपने हृदय में ये दर्शन कीजिए कि ऐसे ये लीला घटी थी। और दूसरे श्लोक में उसको वो भी हमने चर्चा की है, रोदंतम रोने लगा, कृष्ण पकड़ा गया तो रोने लगा, दोनों आंखों को मलने लगा। रुदंतम मोह नेत्र युगमेन मृजंतम, युगमेन मतलब जोड़ा, दोनों आंखों को मसलने लगा। किससे आंख मसलना था? कराम भोजम, अपने हाथ से, अपने कमल हाथ से आंखों को। कैसी आंखें हैं? सतांक नेत्रम, भयभीत आंखें हैं इस वक्त। स शतांक नेत्रम मतलब बहुत डरी डरा हुआ है, उसकी आंखों में भय दिख रहा है, भयभीत आंखों से रोते हुए अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को मल रहे हैं और काजल नीचे बिखर रहा है। ऐसे केवल आंखों से पानी बह रहा है या रोने में और भी कुछ दिख रहा है? मोह श्वास कंप त्रिरेख अंक कंठ, लेकिन केवल आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, लेकिन ऐसे जोर से रो रहे हैं कि पूरा गला हिल रहा है। ये जो नेह ग्रीव है, ये गला है, ये कैसा है भगवान का गला? त्रिरेख अंक कंठ। भगवान का कैसा है? तीन लकीर है सुंदर, जैसे शंख के ऊपर होती है ऐसा बहुत सुंदर तीन लकीरों वाला भगवान का जो कंठ है, उसके अंदर जो मालाएं डाली हुई है माता ने, जो आभूषण जो 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 ऑर्नामेंट पड़े हैं, वो जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण ऊपर नीचे हो रहे हैं। मुसांस कंप, कंप का मतलब कांप रहा है। क्या कांप रहा है? गला। देखा है ना, रोको, ये तो आपको रोना सबको आता है ना, ये तो किसी को सीखने की जरूरत, तो ये ऊपर नीचे गला हो रहा है और सारा तो। और फिर देखिए रो रहा है, फिर भी माने दामोधरम भक्ति बधाम, रस्सी से नहीं, माने अपनी प्रेम भक्ति से दामोदर को बांध दिया। ये लीला हम 5 दिन से वर्णन कर रहे हैं, कैसे रस्सी से बांधने का प्रयास किया, रस्सी छोटी पड़ी और रस्सियां कटी की, दो उंगल रस्सी छोटी रही, एक उंगल भक्त का परिश्रम और प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा, जब ये दो होते हैं तब भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। अब तीसरे में कहीं क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं? भगवान सबको मुक्ति देने वाला स्वयं क्यों बंध गया? जो सबको मुक्ति देता है वो क्यों स्वयं बंध गया? जो खीर सागर में रहता है वो चलू भर दूध के लिए क्यों रोने लगा? तब कहते हैं इति दृक् स्व लीला भी आनंद कुंडे। ये तो लीला सघोषम अपने गोकुल वासियों को आनंद के समुद्र में डुबाने के लिए, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? आनंद कुंडे, कुंड किसको कहते हैं? जैसे वो टेबल के ऊपर देखो दो कुंड बनाए, एक राधा कुंड है एक श्याम कुंड बनाए, ये राधा कुंड का प्रकट्य दिवस है तो वो सुंदर ऊपर कुंड बने हुए हैं दो। कुंड का मतलब पानी का बहुत बड़ा, जैसे आपके वो क्या गंबासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गंबासा, गोम्बासा, गोम्बासेन, तो पानी का जो बड़ा तालाब है ना, तो उसको कुंड बोलते हैं। कौन सा कुंड? आनंद कुंड। ऐसी लीला क्यों करते हैं? बोला आनंद के कुंड में सबको मगन करने के लिए। इति दृक लीला, दृक का मतलब ये देखने को मिलती है। ये लीला दृष्टि कहां होती है? बोला जहां अपने अपने गोकुल में ये लीला की थी। हाँ, इति दृक स्व लीला भी आनंद कुंडे, किसके लिए? सघोषम, अपनी गोष्ठी वालों के लिए। गोष्ठी किसको कहते हैं? ये ग्वाल है ना, तो नंद बाबा की गाय है तो उसको गोष्ठी बोलते हैं। हाँ, गोष्ठी, गोष्ठ बिहारी कहते हैं ना, गोष्ठ बिहारी। एक कहते हैं कुंज बिहारी, जब गोपियों के संग में कृष्ण होते हैं तो कुंज बिहारी कहते हैं, और जब गायों के और ग्वालों के संग में होते हैं तो गोष्ठ बिहारी होते हैं। तो वही कृष्ण कुंज बिहारी है, जब अपनी प्रेमी भक्त गोपियों के संग में होता है, और जब गोपों और ग्वालों और गायों के संग में होता है तो गोष्ठ बिहारी होता है। तो ये गोष्ठ बिहारी अपने घोष वालों को निमंजनतम आनंद में रंजन कराता है और ये दुनिया को दिखाता है आख्यापयत्तम, सबको इसका ये इसका प्रचार करते हैं कि मूर्खों को ये पता नहीं लगता है, लेकिन तदियेचित ग्नेशु जो भगवान के अपने निकट प्रेमी भक्त हैं वो जानते हैं। ज्ञानी नहीं जानते हैं, योगी नहीं जानते हैं, लेकिन जो तदियेश अग्नेशु जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त है वो जानते हैं, क्या जानते हैं,
भक्तिर जितत्व,
कि भक्ति के द्वारा ये अजीत जीता जाएगा। कोई नहीं जीत सकता कृष्ण को, किसी युद्ध में आज तक कृष्ण को किसी ने नहीं जीता। कई युद्ध हुए, कितने असुर आए, 6 दिन का गोपाल है, खे कहते हैं आकाश को, आकाश के से उड़कर पूतना नीचे उतरी, इसको बोलते हैं एयर रेड। ये पहला जो आक्रमण कंस ने किया वो एयर रेड था, आकाश से उतरी थी नीचे पूतना। कभी भी कृष्ण ने किसी भी असुर को, किसी राक्षस को, किसी डीमन को वृंदावन में मारने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। कृष्ण ने ब्रज में कभी अपना चक्कर नहीं धारण किया। कैसे मारा पूतना को, होंठों से, कोमल होंठों से। इतनी बड़ी राक्षसी बकासुर की बहन, अघासुर और बकासुर की बहन, महान असुरी, उसको केवल होंठों से उसका दूध क्या पिया, प्राण ही निकाल दिया। और फिर टैंक का हमला हुआ, आर्टिलरी, वो टैंक वाले हमले में क्या था, सत्तासुर, वो बहुत बड़ा पहियों के साथ उसके कृष्ण के ऊपर, टैंक का मतलब क्या होता है, सैनिकों के ऊपर से चढ़ा दो टैंक को, कृष्ण के ऊपर सत्तासुर चढ़ना चाहता था। कैसे मारा, पांव के अंगूठे को केवल लगाया, बड़े भी नहीं हुए, उतने ही छोटे, 3 महीने के हैं। जब ये सेरेमनी हो रही थी तो केवल कृष्ण करवट बदलना शुरू किया था, तो बड़ा उत्सव किया था मां यशोदा ने। और तृणावर्त आया राकेत, हवा में ऐसे उड़ता हुआ, मिसाइल का हमला हुआ, तीसरा ये मिसाइल आक्रमण, वो उठा के कृष्ण को ले जा रहा था मिसाइल, लेकिन एंटी मिसाइल कृष्ण ने गले में ऐसा बांधा कि वो नीचे आके गिरा। किसी को नहीं, बकासुर को बगले के रूप में आया तो 2 चूंच को ऐसे गनी की तरह 2 टुकड़ों में करके फेंक दिया, अघासुर के अंपेट में चले गए। और केशी आया, उसके मुंह में हाथ पूरा डाल के उसका सांस बंद कर दिया। तो ऐसा भगवान, जिसने गोपाल ने कभी ब्रज में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, कोई उनको जीत नहीं सका, इतने सारे असुर आए, 18 बार जरासंध सेना लेकर आया मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए, 18 बार कई अक्षौणी सेना, लेकिन हर बार हार के गया। जब हारता बलराम पकड़ के आता जरासंध को, बोलता इसको मारता हूं, कृष्ण कहता नहीं, हमारे मामे का सुसर है, कंस हमारा मामा था ना, इसका सुसर है, इसको मत मारो, आंख मार देते ऐसे, कृष्ण मत मारो, मामे का सुसर। राहुल जी बोलते ऐसे क्यों भाई, बोला हम कहां बदमाशों को ढूंढेंगे, जाके अपने आप कटा करके फिर यहां ले आएगा, हम इधर ही बैठ के इनको मारेंगे, हम कहां जाके लोगों को ढूंढे, तो बदमाश अपने इकट्ठे करके यही अपने आप लेके आएगा। तो इतना बड़ा असुर जरासंध, उससे कभी भयभीत नहीं हुए। काल यवन आया, उससे भयभीत नहीं हुए। गोपी यशोदा से भयभीत होकर थर थर कांप रहे हैं, और मां ने बांध भी दिया जितत्व, अहम भक्त प्राधीनो। जब भगवान कहते मैं भक्तों के आधीन हूं, भक्त मुझे कहें कि उठ जाओ तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूं, भक्त कहें बैठो तो बैठता हूं, भक्त कहें बांधेंगे तो बांध लेते हैं, भक्त कहेंगे कि रो तो रोता हूं, जैसे भक्त कहते हैं वे मैं से करता हूं, क्योंकि मैं भक्तों का आधीन हूं। गोपियां कहती थी तेरे को छाछ पिलाएंगे, तू जरा ठमक ठमक नाच के दिखा। अब गोपाल छाछ के लिए नाच के दिखाए, जिसके पिताजी के घर में 9 लाख गाय है उसका क्या छाछ की कमी है, लेकिन फिर गोपियों के प्रेम से चलो चलो पर छाछ के ऊपर गोपियों नचाए। ये सब क्यों, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये केवल प्रेम के कारण ऐसा हुआ। प्रेम के कारण अर्जुन को रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, प्रेम के कारण अर्जुन के रथ को हांकने लगे और मैं भगवान हूं त्रिलोकी नाथ हूं ये भूल गए। प्रेम के बस वीर सबरी के बेर खाए, भूल गए रघुराई। भगवान श्री राम प्रेम से सबरी के बेर खा लिए क्योंकि भक्ति और प्रेम था। विदुर के घर में दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, ये सब भगवान प्रेम के कारण जित भक्ति जितत्व भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं। तो हमको शिक्षा क्या दे रहे हैं सत्यव्रत मुनि नारद मुनि की बात से कि इस जीवन में हम कृष्ण से प्रेम वाली भक्ति करना सीखें। कैसे प्रेम भक्ति सीखेंगे? इन भक्तों के अनुयायी बनने से। जैसे ये भक्त भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं इनके पीछे खड़े होकर देखेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, ऐसे हमको करना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्रज के, इसलिए इसके लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, तदीयेश ज्ञेशो भक्ति तत्व पुनः प्रेम तस्तम सतावृति बंदे। सतावृति का मतलब क्या? सत्य कहते हैं सौ को, हम कहते हैं जय ओम विष्णु पाद परम परम हंस परिवार सत 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 सौ सत सत सौ 108 सत सौ अष्ट 108 जैसे लिखते हैं ना किसी के आगे, तो ये वो सत्य है। मैं 100 बार फिर प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं, किसकी? नमामि ईश्वर, उस गोपाल ईश्वर की नमस्कार करता हूं। फिर हजारों बार सैकड़ों बार 100 बार मैं नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? भक्ति जीते तो भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं। और किसको नमस्कार करते हो 100 बार? बोला उन ब्रजवासी भक्तों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने कृष्ण को की लीलाओं को देखा, और उस गोपी यशोदा को नमस्कार करता हूं जिसके प्रेम से कृष्ण बंध गए। तो किसको? तदीयेश, ये जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं प्रेम से, क्योंकि उन्हों के कारण ये लीला हमको सुनने और देखने को मिली। और फिर 3 श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, ये प्रेयर है पर्सनल सत्यव्रत मुनि की। और उस प्रेयर में क्या कहते हैं? वरम देव, आप तो वरदाता हैं, किसी को भी यू कैन गिव बेनिडिक्शन टू एनीबडी। वरम का मतलब वर देने वाले हो। क्या क्या वर देते हो सबको? मोक्ष, मुक्ति मांगते हैं ना आपके पास सब लोग आकर। ये सब जितने हैं, ये जितने भी ज्ञानी लोग हैं, ये मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वरम देव मोक्षम न, मुझे नहीं चाहिए वो मुक्ति, मैं मुक्ति नहीं मांगता हूं। तो भगवान का मुक्ति नहीं चाहिए तो मुक्ति से कुछ और ज्यादा मांग लो। तो कहते हैं न मोक्ष वधिम वा, मुक्ति से ऊपर वैकुंठ चाहिए? नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। न चान्यम व्रणे, और भी कोई वरदान नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद देखते हैं, और वरदान का मतलब नवदा भक्ति तक बोला कि उससे भी मुझे कोई ज्यादा लेना देना सरोकार नहीं। न हम वरेशक अपी है, और भी मुझे ईश हे वरदाता, मुझे किसी वर की जरूरत नहीं है। भगवान कहते फिर तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम आखिर क्यों प्रार्थना करते शतावर्ती वंदे क्यों कह रहे हो? तब हाथ जोड़ के कहते हैं इदम ते वपुनाथ गोपाल बालम, ये मेरे नाथ, ये मेरे मालिक, ये जो आप वपु, ये आपका सुंदर जो बाल गोपाल का रूप है ना, जो यशोदा के सामने खड़े हुए हो ना, इस रूप का वर मानता हूं। क्या करने के लिए? सदा में मनस्य, मेरे मन में सदा के लिए। आवर्षताम आविर्भाव हो, आविर्भाव का मतलब प्रकट हो, जिसे हम कहते हैं ना आविर्भाव, ये संत का आविर्भाव था। मेरे हृदय में आपके इस बाल गोपाल रूप प्रकट हो जाए तो क्यों मान्य, और कुछ भी नहीं चाहिए, और सबको क्या करो? भगवान कहते बाल गोपाल रूप को क्या करोगे? तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए ना, तो मेरे सुंदर चतुर्भुज रूप किसी का भी तुम वर मांग लो, बोलो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इदम ते वपुनाथ गोपाल, ये अभी जो यशोदा के सामने बंधे हुए खड़े हो ना, यही मुझे रूप बहुत पसंद है और इसी को मैं मेरे मन की तिजोरी में बंद करके रखना चाहता हूं। मनसा, मन में आविर्भाव इसका हो, ये मेरे मन में प्रकट हो। ये क्या है? ध्यान। इस वक्त ध्यान की बात कर रहे हैं कि मेरे को ये वर दीजिए कि जब मैं आंखें बंद कर लूं तो गोपाल बाल यशोदा नंदन आपका ये सुंदर बाल रूप मेरे मन के अंदर प्रकट हो जाए। ये ध्यान को मांग रहे हैं। तो मानो भगवान का इस रूप में तुमको क्या दिखता है? विष्णु के रूप की सब पूजा करते हैं, देखो कितना बड़ा, और लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज रूप है, इस बाल रूप में रोते हुए तो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है इसमें? मानो तो कहते हैं इदम से मुखाम्बोजम अत्यंत नीलई। इसमें ये जो आपका मुख है ना, कमल जैसा मुख, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका ये मुख मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोला इसमें क्या मुख में है? बोला इसके चारों ओर स्निग्धई रक्तई से, ये जो आपके घुंघराले बाल है ना, बहुत काले काले, और ये काले भी हैं और चमकीले भी हैं और इसके अंदर थोड़ी लालाई दिख रही है, और ये जो आपके मुख के चारों ओर से घिरे हुआ मुख के इनके बीच में ऐसे लगता है जैसे किसी कमल के चारों ओर मधुमक्खियां बैठी हैं कि भौरे बैठे हैं, ऐसा ये बहुत सुंदर आपका मुख मुझे, और आपके ये कुंतलई, कुंतलई का मतलब हेयर्स, ये आपके मुझे हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवान के सुंदरता में भगवान के केशों का अथवा भगवान के कुंतलई का बहुत सुंदर वर्णन है कि आपके केश बहुत सुंदर है। भगवान के केशों से रश्मियां निकलती, रश्मियां का मतलब प्रकाश निकलता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है आनंद। तो ऐसे सुंदर आपका मुख जिसके चारों ओर आपके घुंघराले बालों की जो लटकाएं सुंदर सी हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर भाव आ गया अंदर, हृदय में सत्यव्रत मुनि के भाव क्या आते हैं? ये जो आपका मुख है ना, गोप्या मोहश्चुंबितम, इस मुख को गोपी यशोदा बार बार चूमती है। और सनातन गोस्वामी कहते हैं इस गोपी में यहां अर्थ यशोदा भी लगाया जा सकता है और राधा आदि भी लगाया जा सकता है। ये जो आपका मुख जिसको सदा ये गोपी चूमती रहती है, और ये जो घुंघरालू बालों से घिरा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मन मेरे मन में प्रकट हो जाए। और इस मुख में और क्या आपको अच्छा लगता है? बिंब रक्ता धर्म, ये आपके लाल लाल होंठ, सांवला मुंह और लाल लाल होंठ, और उसके बीच में लिखा नहीं है लेकिन बहुत सुंदर सफेद से दांतों की पंक्ति है, बहुत चमकती है, और ये जो आपके होंठ लाल है, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर भी ध्यान की बात करते हैं। मनस्या वृषताम, मेरे मन में इसका आविर्भाव हो आपके सुंदर मुख का। तो भगवान ने कहा कुछ और मांग लो ना, क्या करोगे इसको देखकर? अलम नहीं चाहिए, लक्ष लाभ भाई, मिलियन आप मेरे को और 1,00,000 और वरदान देना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इस बाल गोपाल के रूप के सामने मुझे ये मेरे मन में बस जाए तो मुझे और कोई लाखों आप और वरदान देना चाहो वो तो ना अन्य ही, और किसी की जरूरत ही नहीं। अलम लाख लब नहीं, लाखों और मैं काहे के लिए वरदान मांग के संसार में फंस जाऊं? ये हमको शिक्षा क्या दे रहे हैं? इस दुनिया में हम सब भगवान से कुछ न कुछ मांगने आते हैं। लाख इसलिए बोला है कि लोगों के पास लाख इच्छाएं होती है। मंदिर में आके एक बड़ी लिस्ट के, कल हमने बताया था, लिस्ट पूरी भगवान के सामने रखी है, ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना, लेकिन सत्यव्रत कहता है कुछ मत मांगो। ये सुंदर भगवान का रूप आपके मन में अगर आविर्भाव हो जाए, प्रकट हो जाए, तो फिर कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है। जिसको कृष्ण का सुंदर ये सानिध्य मिल जाए, प्रेम रूप ये हृदय में बस जाए, तो फिर और दुनिया, हमारे हृदय में क्या बसा हुआ है अभी? किसका रूप बसा हुआ है जरा विचार करके देखो। हाँ, किसी के हृदय में बेटे का है, किसी में पत्नी का है, किसी में रुपये का है, किसी में दुकान का है, किसी में मकान का है, किसी में किसी का है, बहुत से और चीजें, उनके बहुत सुंदर सुंदर रूप हमारे हृदय में बसे हुए। अब उतने सारे रूपों के बीच में ये गोपाल का रूप तो आएगा नहीं, वो सब रूप कैसे निकले कि गोपाल का रूप उधर इकट्ठा आके अंकित हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जब भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो आंखों से थोड़े से आंसू बहते हैं। जब आंसू बहते हैं तो हृदय हमारा पिघलता है। जब हृदय पिघलता है तो हृदय में बनी हुई पुरानी मूर्तियां सारी मिटने लगती हैं, और जब वो मूर्तियां मिटती हैं तब जिसकी कथा सुन के आंखों से आंसू आते हैं उसकी मूर्ति अंदर बनने लगती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यह शिक्षा दी कि ये मार्ग करंदन करने का है। करंदन करने का मतलब रोने का है। ये रोना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जिंदगी में कई बार रोए हो, किसी किसी चीज के लिए रोए हो, कभी 10 रुपया गुम हो गया तब भी रोए हो, कभी कोई चीज घर में मिली नहीं तब रोए हो, कभी बेटा दही घंटा देर से आए तो रोए हो, लेकिन भगवान के लिए कभी 2-4 मिनट रोने के लिए टाइम नहीं निकाल सके। दुनिया के लिए बहुत रोए हैं, लेकिन हरि कथा में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि उद्धव जब कथा बोल रहा है और उस कथा बोलते बोलते विदुर को कहते हैं कि विदुर, जाने से पहले श्री कृष्ण ने आपका नाम लेके आपको याद किया था। विदुर ने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड में अंतिम समय कृष्ण ने मेरे को याद किया था। ये भाव आया और विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे और गदगद होके बहुत आनंद में मगन हो गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं भावार्थ में, ऐसे कृष्ण संबंधी कथा में जिसके आंखों से आंसू बहते हैं उसका हृदय धूल के साफ हो जाता है। धूल के किस चीज से साफ हो जाता है? ये जो बेकार की मूर्तियां इस दुनिया की बना के रखी है, जो अंदर में हमेशा परेशान करती हैं, उन सब मूर्तियों को निकाल के ये सत्यव्रत मुनि कहता है, इदम ते वपुनात गोपाल बालम, ये गोपाल बाल की मूर्ति मन में बसानी चाहिए। आप जाके कभी सोचना कि हमारे मन में कितनी मूर्तियां, लिस्ट बनाना, बड़ी लंबी लिस्ट बनेगी। अब उन सारे को मिटाना है, उनको मिटाना है, तभी गोपाल की मूर्ति हृदय में प्रकट होगी। और मिटाने का साधन है भगवान की कथा और कीर्तन में दो आंखों से आंसू गिरने चाहिए। महाप्रभु तो गंभीरा में केवल हर समय रोते थे, कब से भगवान आपसे बिछड़े हैं, कब मिलेगा? कई जन्मों से भगवान से बिछड़े हुए। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम बिछड़। क्या कह रहे महाप्रभु, कैसे भी भगवान मैं आपसे बिछड़ गया हूं तो मैं आपका दास, वापस कब मैं आपके चरणों को? नयनम गलदश रुदार, या जब आंखों से आंसू की धारा बहेगी, गला रुंध जाएगा, शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे, ऐसा जब आनंद आएगा तब सब मूर्तियां अंदर वाली मिट जाएंगी और गोपाल की बांसुरी बजाती हुई मूर्ति हृदय में अंकित हो जाएगी, तब प्रेम भक्ति के जो लक्षण है वो शरीर में प्रकट होंगे। तो ये दो प्रार्थनाओं में मन में भगवान के ध्यान की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान की बात में उनको संतुष्टि नहीं हुई। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके देखना। किसी ने हमको कहा ध्यान करना सिखाओ, हमने बोला तुम्हें आता है? बोला ध्यान करना मुझे कैसे आता है, मैंने बोला आता है। ध्यान का अर्थ क्या है? बोला आंखें बंद करके जो चीज सामने नहीं है वो आदमी देख ले, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान का मतलब जो चीज सामने नहीं है आंखें बंद करो वो दिल के अंदर दिख जाए, और इसी को ध्यान बोलते हैं। हाँ, तो मैंने बोला आपको ध्यान करना नहीं आता है? नहीं आता। आ तो आंखें बंद करो, बंद कर दी। मैंने बोला तुम्हारे घर में तिजोरी में कितने पैसे रखे हैं? बोला वो तो सब दिख रहे हैं, वो तो सब दिख रहे हैं। तुम्हारी पत्नी के कौन से आपने आभूषण बनाए, वो तो बिल के साथ दिख रहे हैं। तो ये सब आपको दिख रहा है जो आपके सामने नहीं है, इसी को तो ध्यान बोलते हैं। तो ये सब क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे प्रेम है। जिससे प्रेम होगा वही चीज दिखेगी आंखों बंद करने से। जिससे हमारा प्रेम हो जाएगा वही चीज हमको दिखेगी जब आंखें बंद करेंगे। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान दिखेगा। हमारा प्रेम किससे दुनिया में, ये बहुत बड़ी हमारी अपने को निर्णय लेना है। अब मन में लालच बढ़ गई क्योंकि भगवान थोड़े मुस्कुरा दिए, इतनी दो प्रार्थना सुनी ना कि बेचारा मन में चाहता है ठीक है अपने घर में बैठा होगा, जब मन में प्रकट हो जाए तो क्या हुआ, तब लालच थोड़ी बढ़ गई। लालच क्या बढ़ गई, प्रेम का भाव का एक लहर उठी हृदय में और तब कहते भगवान का दर्शन ऐसे ध्यान में करूं, ऐसे आंखों से देखूं तो अच्छा है, लेकिन देखने का रास्ता क्या है, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करूंगा तब भगवान दिखते हैं, इसलिए ये नाम संकीर्तन करते हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये सब नाम है, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये नाम कीर्तन है। और फिर अपनी स्थिति बताते हैं कि मेरा क्या हाल है, आप तो ये सब हो, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, अपनी स्त्री की स्थिति क्या बताते हैं, दुख जाला विमग्नम, मैं तो दुख के जाल के संसार में डूब रहा हूं, मैं दुख के जाल के संसार, ये संसार सागर एक बहुत बड़ा सागर है और दुख का सागर है, दुखालयम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम, ये दुख का सागर है और मैं इसमें डूब रहा हूं, और अज्ञा, मैं अज्ञानी हूं, मैं अपनी बुद्धि से आपको नहीं देख सकता, अज्ञा दीन, मैं बहुत गरीब हूं, मैं दीन हूं, दीन में हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुख के जाल में। पहले हमको ये पता ना, हमको आप में से कोई अपने आप को अज्ञानी मानता है, हम तो समझे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको सब कुछ समझ में आता है, मैं अज्ञानी हूं कह रहा है, मैं अज्ञानी हूं, इतनी सुंदर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, मैं दीन हूं, हीन हूं, संसार सागर में डूब रहा हूं, भगवान कहते मैं क्या करूं, बोला कृपा दृष्टि, तेरी कृपा की दृष्टि की वृष्टि, वृष्टि कहते हैं बरसात को, आपके आंखों से कृपा की वर्षा अगर हो जाए मेरी ओर, अगर आप प्रेम से करुणा से देख लो, अनुग्रहण, कैसे अनुग्रह करके, मद अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब अहितु की कृपा करके, अनुग्रह का मतलब है, अनु का मतलब किसी के पीछे चलना, जैसे आपने अनुग्रह करके मां यशोदा के प्रेम से बंध गए हो ना, ऐसे मैं कहता हूं मैं दीन भी हूं, अज्ञानी भी हूं, संसार के सागर में डूब रहा हूं, आप क्या हैं, देव हैं, आपका तो रूप डिवाइन है, देव का मतलब है दिव्य स्वरूप है आपका, आप देव हैं और आप दामोदर हैं, दामोदर का अर्थ क्या है, आप भक्ति से बंध जाते हैं, आप प्रेम से हाथ आ सकते हैं, इसलिए आपको मैं दामोदर को प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मां ने आपको पकड़ लिया था, तो ये तो दामोदर है, तो भक्तों के प्रेम से आप बस में आ सकते हैं, आप दिव्य आपका रूप है, नमो देव अनंत, भगवान कहेंगे मेरे बहुत भक्त पहले हैं, मैं कहां, बोला आप अनंत हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप एक, आप हजारों क्या लाखों गोपियों के संग हर एक गोपी के बीच में खड़े हो सकते हैं, आप तो अनंत हैं, 16108 महलों के अंदर नारद जी ने आपको हर एक महल में अलग अलग काम करते हुए देखा, आप तो अनंत हैं, आप सीमित तो है नहीं, हमारे एक आदमी की तरह के घर में है तो बाहर नहीं, दुकान पे नहीं जा सकते, आप यहां भी हैं, आप तो गोलोक में निवास करते हैं फिर भी संसार में आ सकते हैं, तो आप अनंत हैं, और अनंत विष्णु, आप सर्वव्यापक हैं, विष्णु का मतलब हर जगह है, तो आपको मेरे दिल में आने में कौन सी तकलीफ है, मेरे सामने भी आ सकते हो, और आप ब्रज के कोने कोने में आप जगह जगह घूमते रहते हो, आप विष्णु हो, और फिर नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु, आप प्रभु हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि दर्शन दूं कि नहीं दूं, आप मालिक हो, आपको किसी के अधीन तो हो नहीं, आप प्रभु हो, आप चाहो तो दे सकते हो। मैं तो प्रसाद मांग रहा हूं, प्रसिद्ध मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को ये प्रसाद दो। और प्रसाद क्या दूं, भगवान ने कहा मां एधे अक्षी दृश्य मेरे आंखों के सामने दर्शन दे दो। अभी तक तो कह रहा था मन में आओ, अब कहता मन वाली बात नहीं, आंखों के सामने खड़े हो जाओ। ये भाव का तरंग उठी है, एक बहुत सुंदर हृदय में भाव आया है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। एक्ष अक्ष, अक्ष का मतलब आंख के सामने दृश्य, आंखों के सामने दर्शन दे दो। भगवान ने कहा मेरा दर्शन कोई इतना साधारण थोड़ी मिलता है, और स्वयं भी सोचने लगा तो दर्शन बहुत मुश्किल है। फिर एकदम याद आया, मैं कोई बात नहीं, नीच हूं, अपराधी हूं, पापी हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कुबेर आत्म जो कुबेर के दो बेटे बदमाश थे उनको दर्शन दे दिया, वो नल कुबेर और मणिग्रीव दो कुबेर के बेटे थे जो शराब पीकर लड़कियों के संग नंगे नाच रहे थे, उनको तो कुबेर आत्म जो जो कुबेर के बेटे थे, और आप बद्ध मूर्ति है, आप तो बंधे हुए थे, मोचित हो, उनको तो मुक्त कर दिया, पेड़ से देवता बना दिया। केवल देवता तो नहीं बनाया, आपने उनको भक्ति भाजो कृतोच, आपने तो उनको शुद्ध भक्ति दे दी। भगवान ने कहा अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण, आप मेरी शुद्ध भक्ति और मेरा गान करो जाकर। कुबेर के बेटों को आपने भक्ति दे दी, उनका कौन सा गुण था? नहीं मिलते हैं भगवान सबको आंखों के सामने दर्शन नहीं देते हैं, मन में हो सकता है थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन कुबेर के बेटों के सामने तो आप दोनों के चल के गए थे ना, वो तो पेड़ से चल भी नहीं सकते थे, आप वहां चल के चले गए थे, आपने उनको दर्शन भी दिया और उनको भक्ति भी दी। तब कहते स्वकम में प्रिय वही मैं भक्ति आपसे मांगता, जो उनको आपने भक्ति दी, जो उनको आपने भक्ति दी है, तथा प्रेम भक्तिम स्वकम में प्रिय, मैं उसी प्रेम भक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मुझे वही प्रेम भक्ति दो। कौन सी उनको विशेष प्रेम भक्ति दी है? आज भी वो कुबेर के दोनों बेटे गोकुल में कृष्ण कथा कह रहे हैं, हर समय प्रेम से कृष्ण की कथा के गाते हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं स्निग्ध कंठ और मधु कंठ दोनों प्रेम से कृष्ण कथा दिन में नंद बाबा को सुनाते हैं और गोपों को सुनाते हैं, और सायं काल के बाद गोपियों को सुनाते हैं। पूरा गोपाल कंपू में ये दोनों स्निग्ध कंठ और मधुकंठ नल कुबेर और मणि गिरवेजन को भक्ति भगवान ने दिए, भगवान की प्रचार कथा करने की, भगवान के भक्तों को ये कथा सुनाने की। वो मेरे को कृपा करके भगवान ने ऐसे देख के कहा मैं नहीं जानता हूं कुबेर के बच्चे कौन थे, मैं तो नारद मेरे भक्त ने उनके ऊपर कृपा की थी, नारद ने कहा था इसलिए उनका उद्धार किया, मैं तो नारद के वचनों से बंध गया था, वो मेरा भक्त है, उसने कह दिया तो मैंने उनका उद्धार कर दिया। अब सत्य और तो मैंने कहता है नारद के कहने के ऊपर अपना आपने उनका उद्धार किया तो अब। और भगवान ने एक मिनट ऐसे भी देखा कि तुम मेरे इस रूप को देखना चाहते हो, इसका मतलब कि मैं बंधा ही रहूं इस दर, तुम्हारा मतलब मुखल से बंधा रहा हूं, तुम्हें मोचित हो नहीं, मैं कहता हूं जल्दी खोल दूंगा लेकिन मेरे सामने खड़े हो। मोचित हो का अर्थ ऐसा लिखा है कि भगवान ने ऐसे देखा कि क्या तुम चाहते मैं बंधा रहा हूं, या मैंने बंधे हुए उसको खोल दिया था कि तुम्हारे सामने बंधा ही खड़ा रहा, नहीं मोचित हो, मैं खोलना चाहता हूं आपको। और फिर भाव में आकर कहते हैं नमस्ते अस्तु दामिने, मैं तो आपकी इस रस्सी को प्रणाम करता हूं जिसने आपके पेट के ऊपर, कैसी रस्सी है बोले चमक रही है, रस्सी से रस्सी के अंदर से इस रोप के अंदर से ब्रह्म ज्योति निकल रही है, नमस्ते अस्तु दामिने स्फुरित दामिने, इसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति निकल रही है,
जिस ब्रह्म ज्योति में ज्ञानी लीन होना चाहते हैं वो यशोदा की रस्सी के अंदर से निकल रही है, फांसी खा के उनको मरना चाहिए, उसमें मिल जाएगी यशोदा की रस्सी से स्फूर्ति धाम में। और फिर कहते हैं उदारा अर्थ, और ये आपका उदर पेट कैसा है, पेट विश्वस धाम ने, इसके अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। ये गोपी ने आप अकेले को नहीं बांधा है, पूरी दुनिया को रस्सी से बांधा है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके पेट में। ये जो ब्रह्मांड जब बनता है तब जब गर्भ दक्षाई विष्णु सोते हैं तो उसके पेट के अंदर 14 लोक होते हैं। वो 14 लोक एक जगह बिल्लू होती है नाभि के वहां, वहां से एक कमल की डांडी निकलती है और उस कमल के स्टेम के अंदर 14 प्लानेटरी सिस्टम होते हैं और उसके ऊपर कमल का फूल, उसके ऊपर ब्रह्मा जी। तो ये सारे आपके पेट से निकलते हैं, ये आपका उदर। इसके अंदर आंत वांत नहीं है कि इसके अंदर गुलाब जामुन पड़े होंगे, इसके अंदर पूरा विश्व पड़ा है। गोपी ने आपको नहीं बांधा अकेले को, माने तो पूरे दुनिया को आपके पेट के अंदर बांध दिया विश्वस्य धाम ने। इनको नमस्कार तो करता हूं नारद के कहने के ऊपर, अगर आपने उनको दर्शन दिया था तो अब मैं एक नाम ले रहा हूं, इस नाम को सुन के आप मुझे दर्शन दोगे, जरूर दोगे, मैं आशा करता हूं। भगवान ने कहा क्या नाम लोगे, तब कहते हैं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। अब तो आपकी जो सबसे प्रिय है राधिका और गोपीगण उनके संग है ना, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उन्होंने इशारा किया तो जरूर आप मुझे दर्शन दोगे। तो अब सत्यवर्त मुनि एकदम भगवान के परम अंतरंग शक्ति अहलादिनी शक्ति राधिका, त्वदीया राधिका जो आपकी आराधना करती रहती है, जो हमेशा आपकी सेवा में संलग्न रहती है, जो आपको सुख और आनंद देती है, उसको भी नमस्कार करता हूं। नमः नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, और फिर नमो अनंत लीलाय। आपकी लीलाएं अनंत है, रासलीला आदि का संकेत है, लेकिन ये सब लीलाएं तो मेरे हृदय में आए, लेकिन आप बाल गोपाल मेरे आंखों के सामने दर्शन दे दो, हे देव आपको मेरा नमस्कार है। तो ये दामोदर अष्टक के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद ने दिग्दर्शनी टीका लिखी है, कार्तिक महात्म्य में उसका बहुत सिंपल भाषा में कथा करने का प्रयास किया। इसके पीछे भाव ये है कि जब दीप अर्पण करते हैं भगवान को या सुनते हैं तो ये सारा जो दर्शन है, ये पूरा जो इस 8 श्लोकों के अंदर भगवान का मानो के एक 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 सीडी वीसीडी भरी हुई है, तो जब ऐसे करो तो ये सब देखते रहो कि एक एक शब्द के पीछे क्या भाव है, कैसे बोला जा रहा है, इसका अर्थ क्या है। जब अर्थ के साथ ये करेंगे तो आस्ते आस्ते भाव हृदय में जागेगा, किसी वक्त आंखों से प्रेम के आंसू भी बहेंगे, कभी हृदय गदगद भी होगा। तो ये दामोदर अष्टक के ऊपर सनातन गोस्वामी की टीका का वर्णन है। आज बहुला अष्टमी राधाकुंड का प्रकट्य दिवस है, राधाकुंड भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और कैसा इसका प्रकट्य हुआ इसके ऊपर भी चर्चा कल संडे को कोई भक्त करेगा, अभी रात को करोगे क्या करेंगे आप लोग, भक्त तो कह रहे थे रात 9 बजे तक, लेकिन सब लोगों का मीटर अंदर बोलता है 8:30 बजे मौजे 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 9 बजे झगड़ा करेंगे, जो बैठेंगे वो कीर्तन सुनेंगे, बाकी यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण श्री राधा दामोदर की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। किसका है आज प्रसाद, जल्दी करो भैया सब उठे, उससे पहले लाइए आपका दामोदर का।